नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र का साप्ताहिक कार्यक्रम। मैं हूं सचिन गौर। 17 अप्रैल 2020 के इस बुलेटिन में सुनिए, अमेरिका द्वारा फंडिंग रोके जाने की घोषणा के बाद यूएन स्वास्थ्य एजेंसी कर रही है कामकाज पर असर की समीक्षा। यूएन प्रमुख ने कहा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता का समय, संसाधनों में कटौती का नहीं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुई तालाबंदी को हटाने के लिए 6 कसौटियों का रखना होगा ध्यान। 1930 की आर्थिक महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का मंडरा रहा है खतरा। कोविड-19 के साथ फैल रही है दुष्प्रचार की खतरनाक महामारी। और जानेंगे कि भारत में कोविड-19 पर काबू पाने में किस तरह मदद दे रहे हैं यूएन के वॉलंटियर्स। आपको याद दिलाते चले कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 मानवता के लिए खतरनाक दुश्मन है और इससे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस का, जिन्होंने अमेरिका के उस निर्णय पर खेद जताया है जिसमें यूएन स्वास्थ्य एजेंसी को दी जाने वाली धनराशि तब तक रोके जाने की बात कही गई है जब तक एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। महानिदेशक गेब्रेयेसस ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमेरिका की इस घोषणा पर कहा,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका has been a long standing and generous friend to WHO and we hope
अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का लंबे समय से एक उदार मित्र रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये मित्रता जारी रहेगी। संगठन की फंडिंग रोके जाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिए जाने पर हमें खेद है। महानिदेशक गेब्रेयेसस ने ध्यान दिलाया कि अमेरिकी जनता और सरकार के समर्थन से यूएन एजेंसी दुनिया में सबसे निर्धन और निर्बल लोगों के स्वास्थ्य में बेहतरी लाने के लिए प्रयासरत है। अमेरिका के वित्तीय योगदान के अभाव में कामकाज पर पड़ने वाले प्रभाव की यूएन एजेंसी समीक्षा कर रही है। वित्तीय संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए साझेदार संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि जरूरी काम बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। महानिदेशक गेब्रेयेसस,
इन ड्यू कोर्स WHO's performance in tackling this pandemic will be reviewed by WHO's member states and the independent bodies.
सही समय आने पर सदस्य देश और पारदर्शिता या जवाबदेही के लिए बनाए गए अन्य स्वतंत्र निकाय महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बेहतरी की संभावनाओं की तलाश की जाएगी और सभी के सीखने के लिए सबक होंगे। लेकिन फिलहाल मेरी पूरी एकाग्रता पूरी तरह से वायरस को रोकने और जिंदगियों को बचाने पर केंद्रित है। उधर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी कहा है कि कोविड-19 की चुनौती को पीछे धकेलने की लड़ाई में ये समय वैश्विक स्तर पर एकजुट होने का है, न कि संगठन के संसाधनों में कटौती करने का। उन्होंने दोहराया कि हमारे जीवन काल में ये वायरस अभूतपूर्व है और इससे निपटने के लिए अभूतपूर्व कार्रवाई की जरूरत है। इस बीच यूएन स्वास्थ्य एजेंसी कोविड-19 पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शोध एवं विकास की रफ्तार को बढ़ाया गया है। कोविड-19 के उपचार की तलाश के लिए शुरू हुए एकजुटता ट्रायल में करीब 90 देश और 900 से ज्यादा मरीज हिस्सा ले रहे हैं। 3 वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हो गया है, 70 अन्य पर काम चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पहली एकजुटता उड़ान अफ्रीका के कई देशों के लिए बचाव सामग्री एवं उपकरण जैसे वेंटिलेटर और अन्य सामान लेकर पहुंच चुकी है। ये उड़ानें उन व्यापक प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत 95 से ज्यादा देशों में विश्व खाद्य कार्यक्रम और अन्य एजेंसियों के सहयोग से जीवन रक्षक चिकित्सा मदद पहुंचाई जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में विश्वव्यापी महामारी से उपजे हालात और आर्थिक मंदी के मंडराते बादलों के कारण पहले की तुलना में लाखों अतिरिक्त बच्चों की मौत का शिकार होने की आशंका जताई गई है। गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के मामले में हाल के सालों में जो प्रगति हुई है उससे बड़ा धक्का लग सकता है। वहीं दुनिया के अनेक देशों में तालाबंदी होने और लोगों के घरों तक सीमित हो जाने से अधिकतर बच्चे अब पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन के लिए ऑनलाइन माध्यमों पर समय बिता रहे हैं। लेकिन इस नई वास्तविकता से रूबरू बच्चों व युवाओं के लिए साइबर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी उभरी हैं। इनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
रिपोर्ट बताती है कि कोविड 19 महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों से लाखों की संख्या में बच्चों पर विनाशकारी असर हो सकता है। मौजूदा संकट से उनकी शिक्षा, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है। नई रिपोर्ट पर अपने बयान में यूएन महासचिव ने दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले संकट से बच्चों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है।
I am specially concerned about the well-being of the world's children. Thankfully, children have so far been largely spared from the most severe symptoms of the disease.
यूएन महासचिव कह रहे थे कि मैं खासतौर से दुनिया भर के बच्चों के बारे में भी बहुत चिंतित हूँ। शुक्र है कि ज्यादातर बच्चे अभी इस बीमारी के बहुत गंभीर लक्षणों से महफूज हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां पूरी तरह से उलट पलट हो गई हैं। इस समय लगभग सभी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैं सभी जगह तमाम परिवारों और सभी स्तर पर नेताओं से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। अब तक 188 देशों में देशव्यापी स्तर पर स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है, जिससे 1.5 अरब से ज्यादा बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर असर पड़ा है। 143 देशों में 36 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों में मिलने वाले भोजन पर निर्भर हैं, लेकिन घरों तक सीमित हो जाने के कारण अब उन्हें पोषण के लिए अन्य स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महासचिव ने कहा कि कुछ स्कूल दूरस्थ शिक्षण यानी डिस्टेंस लर्निंग मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ये भी सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं है। धीमी और महंगी इंटरनेट सेवाओं वाले देशों में बच्चे ज्यादातर वंचित साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 60% बच्चे ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पूर्ण या आंशिक रूप से तालाबंदी लागू की गई है। जैसे जैसे संकट बढ़ रहा है, परिवारों में तनाव का स्तर भी बढ़ रहा है। बच्चे घरों तक सीमित हो रहे हैं, वे घरेलू हिंसा के पीड़ित और असहाय दर्शक बनने को मजबूर हैं। और चूंकि बच्चे अब ज्यादा समय ऑनलाइन पर गुजार रहे हैं, हम इस स्थिति से उत्पन्न खतरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण और बहकाने फुसलाने यानी ग्रूमिंग का शिकार हो सकते हैं। यूएन प्रमुख ने सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा जिम्मेदारी दर्शाए जाने की अहमियत को रेखांकित किया है, ताकि ऑनलाइन माध्यमों पर बच्चों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि विश्वव्यापी महामारी के कारण दुनिया को 1930 के दशक की आर्थिक महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे भीषण मंदी का सामना करना पड़ सकता है। कोष ने मंगलवार को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान जारी करते हुए वैश्विक वृद्धि दर में नाटकीय गिरावट आने और उसके घटकर -3 होने की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शोध विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने एक ब्लॉग में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण हुई तालाबंदी से गतिविधियों में जिस तेजी और व्यापकता से गिरावट आई है, उसका अनुभव हमने अपने जीवन काल में अब तक नहीं किया है। कई देशों में स्वास्थ्य, वित्तीय संसाधनों और वस्तुओं की कीमतों में गिरावट सहित विविध प्रकार के संकट खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी संकट जटिल ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के मुताबिक नीति निर्माताओं ने घरों, कंपनियों, वित्त बाजारों को अभूतपूर्व मदद प्रदान करने की घोषणा की है और अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि तालाबंदी खत्म होने के बाद आर्थिक परिदृश्य किस तरह करवट लेगा। उन्होंने कहा कि अनुमानों के मुताबिक अधिकतर देशों में महामारी और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जरूरत साल की दूसरी तिमाही में सबसे ज्यादा होगी, जिसके बाद उसमें धीरे धीरे गिरावट आएगी। हालांकि वर्ष 2021 के लिए आशाएं बरकरार हैं, बशर्ते कि COVID-19 बीते समय की बात हो जाए और उससे निपटने के लिए किए गए नीतिगत उपायों से बड़े पैमाने पर दिवालियेपन, रोजगार खोने और अन्य वित्तीय दबावों की रोकथाम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था में उछाल आने का अनुमान जताया है और कहा है कि इसमें 5.8% की बढ़ोतरी हो सकती है। विश्वव्यापी महामारी के कारण वैश्विक जीडीपी को होने वाला संचयी नुकसान 9 ट्रिलियन डॉलर तक होने की आशंका है, जो जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं को मिला देने से भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सोमवार को बताया कि अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व और कैरिबियाई क्षेत्र में 25 सबसे निर्धन और निर्बल देशों के लिए तत्काल कर्ज राहत का प्रबंध किया जा रहा है। इससे इन देशों को कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना देने वाले प्रभावों से निपटने में मदद मिल सकेगी।
कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के तहत कई देशों में पिछले कई हफ्तों से सामाजिक और आर्थिक पाबंदियां लागू हैं और अब इन पाबंदियों को हटाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनेक देशों में लागू किए गए लॉकडाउन यानी तालाबंदी को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से हटाने की रणनीति पर देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये पाबंदियां एक झटके में हटाए जाने से वायरस के फिर से तेजी से सिर उठाने के हालात पैदा कर सकती है। यूएन एजेंसी के मुताबिक मानव स्वास्थ्य की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए तालाबंदी और पाबंदियों को हटाते समय 6 कसौटियों को ध्यान में रखा जाना होगा। संक्रमण के फैलाव पर काबू पा लिया गया हो, हर मामले का पता लगाने, परीक्षण करने, संक्रमितों को अलग रखने, उपचार करने और उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार हो, स्वास्थ्य केंद्रों और नर्सिंग होम जैसे स्थानों पर महामारी फैलने का जोखिम कम किया जाए, कार्यस्थलों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर रोकथाम के उपायों का प्रबंधन हो, अन्य देशों से आने वाले संक्रमणों के जोखिम से निपटने का प्रबंध हो और नए सामान्य हालात के अनुरूप जीवन में बदलाव लाने के लिए लोग व समुदाय शिक्षित व सशक्त हों। देशों को ऐसे व्यापक उपाय लागू करने की सलाह दी गई है जिनसे संक्रमण की रफ्तार में कमी आए और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। कोविड-19 से अब तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 1,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे समय जब दुनिया घातक विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से जूझ रही है और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए स्पष्ट तथ्यों की तलाश जारी है, उस समय गलत जानकारियों की खतरनाक बीमारी भी फैल रही है। ये भी डर बढ़ रहा है कि भ्रामक प्रचार के कारण बहुत सी जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। इनके कारण बहुत से लोग अपने लक्षणों का इलाज गैर साबित तरीकों से इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने इस समस्या को मिस इन्फोडेमिक का नाम देते हुए इसका समाधान भरोसे की वैक्सीन बहाल करने के रूप में सुझाया है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर महबूब खान।
यूएन प्रमुख ने मंगलवार को जारी अपने संदेश में कोविड-19 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और किससे सलाह लें। ये समय विज्ञान और एकजुटता का है, लेकिन उन्होंने क्षोभ जताते हुए कहा कि इस समय नफरत बड़े पैमाने पर फैल रही है जिसमें लोगों और समूहों को कलंकित किया जा रहा है और उन पर दोष मढ़े जा रहे हैं। दुनिया को इस बीमारी के खिलाफ भी एकजुट होना होगा। यूएन महासचिव ने इस कठिन समय में भरोसे की वैक्सीन को अपनाने की बात कही। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि सबसे पहले विज्ञान में भरोसा करना होगा। उन्होंने उन पत्रकारों और तथ्यों की जांच के काम में जुटे लोगों का अभिवादन किया जो गलत जानकारियों को बढ़ावा देने वाली कहानियों और सोशल मीडिया पोस्टों के अंबार में भी तह तक जाकर सच्चाई का पता लगा रहे हैं। यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि कोविड-19 पर नफरत और नुकसानदेह दावों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को और ज्यादा प्रयास करने होंगे। दूसरा, उन संस्थाओं में भरोसा रखना होगा जो जिम्मेदारी से तथ्यों पर आधारित काम पूरे करती हैं और नेतृत्व पर आधारित काम करती हैं, और एक दूसरे में भरोसा करना होगा। किसी भी संकट पर पार पाने में हमें आपसी सम्मान और मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ने के रास्ते की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि आइए एक साथ मिलकर हम झूठ और बेसिर पैर की बातों को खारिज करें। उधर यूनेस्को ने भी कहा है कि इस तरह के दुष्प्रचार अभियानों के कारण तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता के लिए और खासतौर से महामारी से लड़ाई के मौजूदा माहौल में लोगों की जिंदगियों के लिए जोखिम पैदा हो गया है।
भारत में कोविड-19 संक्रमण के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस पर काबू पाने में यूएन वॉलंटियर्स भी हाथ बटा रहे हैं। भारत में यूएन वॉलंटियर्स के फील्ड कार्यों के प्रमुख अरुण सहदेव ने यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा से एक बातचीत में बताया कि किस तरह यूएनवी कोविड-19 के संकट काल में जमीनी स्तर पर काम में जुटा है।
कोविड-19 का जैसे ही शुरुआत हुआ था तो हमने जितने अपने 58 जिलों में जो स्वयं सेवक हैं उनकी ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की, उनके लिए स्टैंडर्ड प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध कराया गया और उनमें एक छोटा सा क्वीज और कंपटीशन के माध्यम से उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए कार्य किया गया ताकि वो कोविड-19 के बारे में पूरी तरह तैयार हो, उनकी जानकारी पूरी हो ताकि वो आगे उसको जनमानस तक पहुंचा सके।
इस समय सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत मेडिकल क्षेत्र में है तो क्या उसके लिए भी किसी तरह का प्रशिक्षण काम जारी है जिससे अस्पतालों में हाथ बटाया जा सके?
जो स्वयंसेवक हैं जो हमारे जिले स्तर पर कार्य कर रहे हैं मुख्य रूप से जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं। अब उस सपोर्ट में जो कार्य है वो कार्य 3-4 क्षेत्रों में है। एक कार्य है कि मास्क बनाना और मास्क सभी तक पहुंचाना, जो जरूरी सामान है जो जीवन जनमानस को दिन प्रतिदिन की जरूरत होती है जैसे खाद्य सामग्री है, कुछ दवाइयां हैं, तो उनको उपलब्ध कराना तथा उनको उनको जो लास्ट माइल है मतलब जो लोग गांव में रहते हैं दूर दराज में रहते हैं उन तक पहुंचाना काफी जरूरी साबित हो रहा है। तो एक तो ये है, जहां तक इनका हेल्थ से संबंधित कार्य है वो डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट है। तो कई स्थानों पर कई जिलों में जो हमारे स्वयं सेवक कार्य कर रहे हैं उसमें जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, समन्वय का काम कर रहे हैं स्थानीय अधिकारियों के साथ, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर के स्तर पर समन्वय है और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनिंग है हेल्थ रिलेटेड कोविड का, तो उनको स्थानीय अधिकारियों और स्थानीय युवकों के बीच में उन ट्रेनिंग को करवा रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा उसको डाउनलोड कराने में मदद कर रहे हैं।
तो ये देखा जा रहा है कि संकट के दौरान दुष्प्रचार एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, लोग अफवाहों पर विश्वास ना करें और उन तक सही जानकारी पहुंचे, क्या इसके लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं यूएनवी की तरफ से?
शुरू से ही हम लोगों ने स्वयं सेवकों को ये बता दिया कि आप सिर्फ भारत सरकार के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, राज्य सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा और किसी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जानकारी के संबंध में उसी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक तो ये था कि जो डायरेक्ट और उसको हम लोगों ने काफी जो लोकल लैंग्वेजेज हैं तो उसमें हमारे स्वयंसेवकों ने जो भी आधिकारिक तौर पर जो मैसेज आया उसको हिंदी अंग्रेजी के अलावा बहुत सारे लोकल लैंग्वेज जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु में और नॉर्थ ईस्ट में जो जहां जहां राज्य के स्तर पर उसको लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया गया। दूसरा है कि जो ये नेटवर्क है ये अभी सोशल मीडिया में पहले से काफी जुड़ा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ कि हर वीक करीब 3 लाख लोगों तक पहुंचते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप का एक एक्सटेंशन है और हर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो नेशनल यूथ वॉलंटियर है वो नजर रखते हैं। जैसे ही पता चलता है वो जो नेटवर्क है यूथ क्लब का और नेशनल यूथ वॉलंटियर्स का वो अपने आप इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म के द्वारा ही उसको हटा रहे हैं ताकि गलत जानकारी लोगों तक न पहुंच सके।
लेकिन हम कई जगहों पर देख रहे हैं कि सामाजिक भेदभाव हो रहा है, फिर चाहे वो प्रवासी मजदूरों पर कीटाणु नाशक छिड़कने की घटना हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की, तो ऐसे में सद्भावना और दयालुता फैलाने की बहुत जरूरत है, क्या इसके लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं?
और जो आप भारत सरकार का जो NYKS और NSS का जो नेटवर्क है जिसमें करीब करीब 7 मिलियन मतलब करीब 70 लाख स्वयं सेवक जुड़े हुए हैं पूरे देश में, उनका एक मैंडेट यही है कि वो राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान देते हैं जिसमें सामाजिक सद्भावना एक मुख्य आयाम रहा है शुरू से। तो हमारे जो 58 जिले में जहां हम लोग NYKS और NSS के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वहां भी सामाजिक सद्भावना शुरू से ही हमारे सारे प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा है और कोविड-19 के रेस्पॉन्स और प्रिपेयरनेस के दौरान भी इस ये बात पर हमेशा जोर दिया गया। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ तैयारियां भी की कि जो हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उन सारे वॉलंटियर्स के लिए हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण का व्यवस्था किया कि आप उससे क्या समझते हैं, क्योंकि स्टिग्मेटाइजेशन या सामाजिक भेदभाव या जो कोविड के में जो लोग जो परिवार जिन जो इस दौर से गुजर रहे हैं तो उनके पर क्या बीतती है। तो जैसे एम्पथी की बात कर रहे हैं कि आप अपने को डाल के देखो कि अगर आपके पास है आपकी क्या गलती है अगर आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो इस तरह का प्रशिक्षण से काफी मदद मिला। तो भी वो जाके वाल पेंटिंग और लोगों के साथ बात करना और लोगों को समझाना, तो ये काफी मदद साबित हो रहा है।
ये थे UNV के फील्ड कार्यों के प्रमुख अरुण सहदेव। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।